મહાબંધ પુસ્તક પાંચમી લેક્ચર નંબર 7 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વર્ચાયાણમ નમો લોએ સૌવસાહુણમ ભૂતબલિપ્રણીતં તં બંધતત્વપ્રકાશકં મહાધવલવિખ્યાતં મહાબંધં નમામ્યહં. આચાર્ય શ્રી ભૂતબલિ ભટ્ટારક પ્રણીત એ મહાબંધ નામ કા સિદ્ધાંત શાસ્ત્ર હૈ જો ષટખંડાગમ કા 6 નંબર કા ખંડ હૈ. इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार को देखते हुए हम पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 26 पर आ गए. 26 ये बंध के सन्निकर्ष की प्ररूपना चल रही है और उत्कृष्ट अनुभाग बंध के सन्निकर्ष के प्रकरण में उत्तर प्रकृतियों में अभी हम स्वस्थान में उत्कृष्ट अनुभाग बंध का सन्निकर्ष देख रहे थे. सभी मार्गणाओं में देखते हुए अभी हम अभव्यों की बात पढ़ने जा रहे हैं. 26 पृष्ठ पर नीचे वो बीच वाला पैराग्राफ है ना, अभव्यों में 7 कर्मों का भंग ओग के समान है. क्योंकि हमने देखा ना, ज्ञानावरण का एक का उत्कृष्ट है तो अन्य चारों का भी उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी, जहां दोनों विकल्प है वहां षट्स्थान पतित होता है, षट्स्थान पतित ही ना. यहाँ स्वामी को देखते हुए संगी पंचेन ये सर्व संकलेश वाला जो है वो अप्रशस्त कर्मों का उत्कृष्ट करेगा और अभव्य है तो सर्व विशुद्ध वाला अभव्य वाला वो हाँ प्रायोगिक लब्धि जैसे स्थान ये हम समझने के लिए देखते हैं तो उनके प्रशस्तों का उत्कृष्ट होगा. अब पढ़ते हैं यहाँ पर पहले वाक्य पूरा पढ़ते फिर एक एक प्रकृति को ले लेंगे. दो गति, दो गति यानी नर गति तिरंज गति, चार जाति यानी एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति, पांच संस्थान यानी समचतुरस्र को छोड़कर, हाँ हाँ दो से लेकर पांच सहनन ये भी दूसरे से लेकर, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क दो अनुपूर्वी जो गति की वही अनुपूर्वी, उपघात आतप उद्योत अप्रशस्त विहाय गति स्थावर आदि चार यानी स्थावर सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त और अस्थिर आदि 6 का भंग ओघ के समान है. सबको एक साथ बता दिया, हरेक का कथन हरेक का जो सन्निकर्ष वो अलग अलग है. थोड़ा देख लेते हम. हाँ नहीं, क्योंकि बाद में वो मनुष्य गति पंचक और देवगति चतुष्क का बताने वाले. तीसरे लाइन में लिखा है मनुष्य गति पंचक और चौथी लाइन में देवगति चतुष्क का, क्योंकि उसके स्वामी जो कौन है क्या है उसके अनुसार वो बात है. देखो ये नरक गति का उत्कृष्ट करने वाला जीव उसकी बात हम पढ़ते, निकालो 2 और 3 पेज, क्योंकि हम फटाफटा बोलेंगे आपको कुछ नहीं समझेगा वो, उससे हम सभी प्रकृतियों को डिटेल में देखेंगे. 2 नंबर के पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ देखो, नरक गति का उत्कृष्ट बंद कर रहा है ये मनुष्य तिर्यंच है, सर्व संकलेश वाला है. वो उसके साथ नियम से बंधने वाली जो प्रशस्त प्रकृतियां है वो कैसे बांधेगा, नियम से बांधेगा अनंत गुणाहीन. तो कौन कौन सी है, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिक शरीर तेजस शरीर कार्मन शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुर लघु 3, त्रस चतुष्क और निर्माण का नियम से बंद करता है. और वो अनंत गुणाहीन करता है। अब अप्रशस्त प्रकृतियां कौन कौन सी बनती है, तो हुंड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, नरक गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिर आदि छह का नियम से बंद करता है, वो उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी और स्थान पतित होगा। ये हो गया नरक गति की बात। हुंड संस्थान चौथी लाइन में, क्या क्या मैंने पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था ना, हाँ तो ये हो गए नरक गति की बात। अब तिरंज गति की बात तीन नंबर के पृष्ठ पर। अब तिरंज गति का उत्कृष्ट कर रहा है, वो तिरंज गति का उत्कृष्ट बंद तो देव और नारकी करते, मनुष्य नहीं, मनुष्य अति संकलेश में नरक गति को ध्यान देगी। तिरंज गति का उत्कृष्ट अनुभाग बांधने वाले नारकी है और देव है, परंतु देव तो नीचे वाले देव एकेंद्रीय जाति के साथ बांधेंगे, ऊपर के देव पंचेंद्रीय जाति के साथ बांधेंगे, तो कुछ प्रकृतियां तो कदाचित वाली होगी। तो यहाँ तिरंज गति का उत्कृष्ट बंद करने वाला जो एकेंद्रीय जाति, यहाँ असंप्राप्त सुपाटी का सहनन हमने डाला था जो यहाँ पांचवी लाइन में लिखा है, वो यहाँ पर लेना है। उसके लिए भी हमने चर्चा की थी, 19 पेज पर रेफरेंस भी बताया था। अप्रशस्त विहाय गति स्थावर और दुष्वर का कदाचित बंद करता है, क्योंकि कोई एकेंद्रीय जाति के साथ तिरंज गति का उत्कृष्ट करते है, कोई पंचेंद्रीय जाति के साथ, इसलिए ये प्रकृतियां जो विकल्प रूप जो है कदाचित में रखते हैं। और यदि बंद करता है तो उत्कृष्ट का भी और अनुत्कृष्ट का भी, क्योंकि ये सारी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, और अनुत्कृष्ट होगा तो छह स्थान पतित। अब इसके साथ बनने वाली पंचेंद्रीय जात यानी वो ये भी कदाचित बंधेगी पर प्रशस्त है, पंचेंद्रीय वहां एकेंद्रीय जाति ली वो अप्रशस्त थी, ये पंचेंद्रीय जाति प्रशस्त है, औदारी कंगोपा, यहाँ असम्राव त्रिपाठी का सन यहाँ से हमने निकाल दिया था। आतप उद्योग और त्रस का कदाचित बंद करता है, ऊपर की प्रकृतियां कदाचित वाली अप्रशस्त थी तो वो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी थी, और ये कदाचित वाली प्रशस्त है, तीन नंबर के पेज पर हम रेफरेंस देख रहे, इसलिए वो कदाचित है परंतु अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा अनंत गुणाहीन होगा। अब नियम से बंधने वाली कौन सी है, औदारिक तेजस कारमान शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष्क अगुर लघु तीन मादर पर्याप्त प्रत्येक और निर्माण, वो कैसा होगा, अनंत गुणाहीन होगा। और नियम से बंधने वाली अप्रशस्त कौन सी है, तो हुंड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिरंज गत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पांच का, क्योंकि दुष्वर हमने ऊपर कदाचित में रखा था, ये नियम से बंद करता है, वो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी और स्थान पतित। हमारी बात 26 पेज की चल रही थी अभव्यों में, हमने दो गति यानी नरक गति का भी देखा, तिरंज गति का ओक के समान देखा। अब चार जाति में एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रीय जाति, तीनद्रीय जाति, चतुरेन्द्रीय जाति, वो पांच नंबर के पृष्ठ पर है, चार नंबर पर है। देखो एकेंद्रीय जाति का उत्कृष्ट करने वाला ये कौन है, तो सौधर्म ईशान वाला, यानी सौधर्म ईशान तक का देव, पितलेशा वाले देव, तो वो इसके साथ वो प्रशस्त कौन से बंधेगे, तो वो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी होगा। तो तिरंज गति हुंड संस्थान अप्रशस्त वर्ण चतुष्क तिरंज गत्यानुपूर्वी उपघात स्थावर और अस्थिर आदि पांच का नियम से बंद करता है, ये सारे कैसे अप्रशस्त प्रकृति और नियम से बंद रही है इसके, तो वो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी होगी छस्थान पतित होगी। अब नियम से बंधने वाली प्रशस्त प्रकृतियां लेनी है, तो एकेंद्रीय जाति बंद रही है, औदारिक शरीर तेजस शरीर कारमान शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष्क अगुरु लघु त्रिक लिया, क्योंकि देव बांध रहे हैं तो बादर पर यानी वो पर्याप्त प्रत्येक को बांधेंगे, तो बादर पर्याप्त प्रत्येक भी लिया और यहाँ परघात उच्छ्वास को भी ले लेंगे, इसलिए अगुरु लघु त्रिक बादर पर्याप्त प्रत्येक और निर्माण का नियम से बंद करेंगे, पण ये प्रशस्त होने से कैसी बंधेगी, तो अनंत गुणाहीन बंधेगी। आतप और उद्योग का कदाचित करेंगे, एक इंद्रिय का उत्कृष्ट के साथ वो अनंत गुणाहीन बंधेगी, क्योंकि वो प्रशस्त प्रकृति है। वो एक इंद्रिय जाति का हमने सन्निकर्ष देखा, अभी द्विंद्रिय जाति का। द्विंद्रिय जाति का उत्कृष्ट कौन बांधेगी, मनुष्य तिर्यंच। और वो कौन सा वाला बंध स्थान होगा, द्विंद्रिय अपर्याप्त वाला। तो उस वहां बंधने वाली अप्रशस्त जो है वो देखेंगे हम, परंतु वो उत्कृष्ट नहीं बंधेगी। केवल द्विंद्रिय जाति के उत्कृष्ट के साथ असंप्रवास वाटिका का नहीं, यहाँ उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं, यहाँ अनुत्कृष्ट ही होगा। मनुष्यों के लिए उत्कृष्ट हो सकता है, ऊपर द्विंद्रिय जाति का उत्कृष्ट हो रहा है, वहां असंप्रभाव सुरपाटी का कैसा होगा? क्योंकि असंप्रभाव सुरपाटी का उत्कृष्ट कौन करते है, ऊपर के देव करेंगे ना, नारकी भी करेंगे, यहाँ वो अनंत गुणहीन होगा। देखो फिर से पढ़ रहे हम 4 नंबर के पृष्ठ पर, द्विंद्रिय जाति का उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव। अब यहाँ बंधने वाली प्रशस्त भी और अप्रशस्त भी अनंत गुणाहीन बंधेगी, क्योंकि तिर्यंच गति का उत्कृष्ट हमने देखा था अभी, देवनारकी करते उत्कृष्ट, और औदारिक शरीर का उत्कृष्ट तो देवनारकी समय दृष्टि करेंगे, यहाँ वो दोनों ही कैसे बंधेगी, अनंत गुणाहीन। ये सारी प्रकृति ना जो नियम से बंधेगी, तिर्यंच गति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमन शरीर, कुंड संस्थान, वो तो नरक गति के साथ और तिर्यंच गति के साथ उत्कृष्ट बंधा था, यहाँ वो अनंत गुणाहीन है। औदारिक अंगोपांग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु उपघात, ये द्विंद्रिय अपर्याप्त है इसलिए परघात उच्छ्वास को नहीं लिया। त्रस बादर अपर्याप्त को लिया, प्रत्येक अस्थिर आदि 5, दुस्वर नहीं लिया क्योंकि अपर्याप्त के साथ नहीं बंधेगी। और निर्माण का नियम से अनंत गुणाहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है। असंप्राप्त सुपाटिका सहन का नियम से ये उन्होंने उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी लिया, तो हमने काट डाला था और वहां लिखवाया था अनंत गुणाहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है, क्योंकि नारकी और पद्मलेशा वाले देव इसका उत्कृष्ट करेंगे, यहाँ वो अनुत्कृष्ट अनंत गुणाहीन बंधेगी। योगे द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति की ऐसी बात लेना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर 5 संस्थान और 5 सहनन, जो हमने 5 नंबर के पेज पर बहुत बार देखे थे। निग्रोध संस्थान का उत्कृष्ट कर रहे, तो यहाँ तिर्यंच गति मनुष्य गति ऑप्शन है, स्वाति के साथ भी मनुष्य गति तिर्यंच गति ऑप्शन होगा, पर कुब्जक के साथ तिर्यंच गति का ही बंध होगा। हाँ, अभी उसके साथ जो बंधने वाली जो प्रशस्त है वो तो अनंत गुणाहीन बंधेगी बंधेगी, अप्रशस्त है वो भी अनंत गुणाहीन बंधेगी। और कौन से संस्थान के साथ कौन कौन से बंधेगी उसकी भी बात हमने देखी थी। हमने ये भी बात गौर की थी कि जो समान वाले जो है ना, उसको बंध ही नहीं होता है, वहां पर उसकी सन्निकर्ष बताई नहीं कहीं पर भी। जैसे हास्य के साथ पुरुष वेद का भी सन्निकर्ष नहीं बताया है। हाँ, ओग में भी और अन्य जहां जो पॉसिबल है तब। अब ये हो गया 2 गति 4 जाति 5 संस्थान 5 सहनन। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तो अप्रशस्त वर्ण चतुष्क का जो उत्कृष्ट कर रहा है, ये अप्रशस्त प्रकृति उत्कृष्ट बन रही है, तो मनुष्य तिर्यंच नरक गति के साथ बांधेंगे तो नरक गति भी बांधेंगे, देवनार की तिर्यंच गति के साथ भी बांधेंगे, तो उसमें 2 गति का ऑप्शन होगा। हाँ, तो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी बंधेगी उसको, उपघात भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट बंधेगा। तो इससे इसके साथ बंधने वाली, क्योंकि ध्रुव बंधी है, तो यहाँ बंधने वाली जो ध्रुव बंधी प्रशस्त प्रकृतियां है वो अनंत गुणाहीन बंधेगी। अब 2 अनुपूर्वी गति के समान उपघात का अप्रशस्त वर्ण चतुष्क के समान ही उपघात का होगा। आतप और उद्योत का उत्कृष्ट कर रहा है, तो आतप का उत्कृष्ट है तो वहां तो तत्प्रायोगिक विशुद्धि है उसकी। हाँ, तो ये सभी प्रकृतियां जो प्रशस्त अप्रशस्त सभी अन्य है वो कैसे बंधे, अनंत गुणाहीन बंधेगी। अप्रशस्त विहाय गति ये भी जैसे हमने देखा ना, इसके साथ अप्रशस्त विहाय के उत्कृष्ट के साथ नरक गति या तिरंज गति का बंध होगा, वो जो वैसा ही होगा इसका भी कथन। स्थावर आदि चार, स्थावर का हाँ स्थावर आदि चार, स्थावर का उत्कृष्ट तो देव करेंगे और सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का तो मनुष्य तिरंज करेंगे। तो स्थावर के उत्कृष्ट के साथ एकेंद्रीय का उत्कृष्ट हो सकता है, जो अभी हमने एकेंद्रीय जाति का देखा वैसा ही स्थावर का भी सन्निकर्ष होगा, अभी हमने देखा था ना, पढ़ा था ना। और सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का वो तो मनुष्य तिरंज करते हैं और वहां एकेंद्रीय जाति बनती है, पर वो एकेंद्रीय जाति उत्कृष्ट नहीं बनेगी क्योंकि इसका उत्कृष्ट बंध अति संकलेश वाले देव करेंगे और यहाँ उतना संकलेश नहीं है, मनुष्य तिरंज अति संकलेश में नरक गति बांधेंगे, इसलिए यहाँ पर उसके जो बाकी अप्रशस्त भी कैसे बंधेगी, अनंत गुणाहीन बंधेगी। केवल उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट किसके साथ होगा, सूक्ष्म का साधारण और अपर्याप्त के साथ और उनका इनके साथ, बाकी तो सारे अनंत गुणाहीन बंधेगी। अस्थिर आदि छह का भंग उप के समान है, तो अस्थिर का भी अस्थिर आदि छह का जो उत्कृष्ट बंध होता है तो नर गति तिरंज गति दोनों का विकल्प है, वैसा ही घटित कर देना। अब आगे बढ़ते, अभवियों की मार्गणा चल रही है। मनुष्य गति पंचक और देवगति चतुष्क का भंग सामान्य तिरंजों के समान है, ये नहीं भूलना है, यहाँ पर ये अभव्य है। इसलिए ओघ में तो हम मनुष्य गति पंचक का उत्कृष्ट तो देवनार की सम्य दृष्टि देखते थे, यहाँ सर्व विशुद्ध देवनार की मिथ्या दृष्टि लेना है, यानी वहां सम्य दृष्टि हम मिथ्यात्व में रखना पर सर्व विशुद्ध लेना, क्योंकि सर्व विशुद्ध मनुष्य तिरंज वो तो देवगति बांधेंगे, तो यह मनुष्य गति बांधने वाले सर्व विशुद्ध देवनार के हो गए। ख्याल में आती है ना बात ये? हाँ हाँ, वज्रषभ नार यानी मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूरी औदारिक औदारिक अंगोपांग और वज्रषभ नारा सहन, वो आपस में सारे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हो गए। अन्य जो प्रकृतियां बनती है तो अन्य प्रकृतियों की बात कैसे, पंचेंद्रिय कैसे? हाँ, क्योंकि ये तो मिथ्या दृष्टि है, इसमें कोई अन्य गुणस्थान है नहीं। ओघ में कैसे कहते थे, चौथे गुणस्थान वाले देवनारकी को मनुष्य गति का उत्कृष्ट था, परंतु वहां पंचेंद्रिय जाति अनंत गुणाहीन बनती थी क्योंकि वो तो क्षपक में उसका उत्कृष्ट था। यहाँ तो सारे मिथ्या दृष्टि सर्व विशुद्ध वाले है, तो वहां एक कोई प्रकृति बनती उत्कृष्ट मनुष्य गति का उत्कृष्ट देवनारकी को होता है, तो वहां पंचेंद्रिय जाति फिर औदारिक शरीर तेजस ये जो सारी प्रशस्त प्रकृतियां है वो उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी होगी। वैसे जो देव गति चतुष्क का उत्कृष्ट कर रहे हैं वो कौन है, मनुष्य तिरंज कर रहे हैं। हाँ, तो उसके साथ भी जो पंचेंद्रिय जाति वगैरह प्रशस्त प्रकृतियां है वो उत्कृष्ट है अनुत्कृष्ट बन देगी, और इनके साथ बंधने वाली जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं वो अनंत गुणाहीन बंधेगी, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट सर्व संकलेश वाले का है और ये प्रशस्त प्रकृतियां हैं सर्व विशुद्धि में उत्कृष्ट बनती है। तो सामान्य तिरंजों के बता दिया, पंचेंद्रिय जाति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव, अभी हमने देखा ना मनुष्य गति के साथ भी पंचेंद्रिय जाति बंधेगी, देवगति के साथ भी वो उत्कृष्ट बंधेगी, तो पंचेंद्रिय जाति का जो उत्कृष्ट कर रहा है वहां पर भी दो गति यानी मनुष्य गति और देवगति दोनों का विकल्प होगा, क्योंकि ये भी प्रशस्त है और वो दोनों भी प्रशस्त प्रकृतियां हैं। हाँ, उसका स्वामी अलग अलग है परंतु हमको यहाँ सन्निकर्ष देखना है, तो दो गति की बात है, मनुष्य गति देवगति, दो शरीर यानी औदारिक भी और वैकरिक भी, दो अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ये सबको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ये तो कदाचित ऑप्शनल में रखेंगे, दो अनुपूर्वी और उद्योत का कदाचित बंद करता है। उद्योत का तो जो बताया है पंचेंद्रिय सातवें नरक का नार के उद्योत का इसलिए लिया, तिरंज गति बांधता है ना वहां पर सर्व विशुद्ध है। वो उत्कृष्ट नहीं बनेगी। यहाँ तो हमको बनती है कि नहीं और उत्कृष्ट है ना उत्कृष्ट है, ये सभी कैसी उत्कृष्ट भी बनती है ये हमको देना है। तिरियन जगती और प्रशस्त है, वो अनंत गुना ही बन देगी। देखो तो इनका कदाचित बंद करता है, और यदि बंद करता है तो उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। शेष प्रशस्त प्रकृतियों का नियम से बंद करता है, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति बन रही है और वहां शेष प्रशस्त प्रकृतियां, ये कदाचित वाली यहां बता दी, और बाकी जो है प्रशस्त प्रकृतियां नियम से बनने वाली है, अगुर लघु चतुष्क वगैरह सब ले लेना उसके साथ। हाँ, तेजस कर्माण वगैरह, तो शेष प्रशस्त प्रकृतियों का नियम से बंद करता है, वो त्रस चतुष्क वगैरह सब ले लेना उसके साथ, निर्माण वगैरह। किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है, ये समझ में आई ना बात। हाँ, और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क उपघात, यहां और नहीं लिखना है, इन लिखना, और के बदले इन, फिर अप्रशस्त रखना वहां पर, और बाद में विहाय गति का लिखा वहां प्रकृतियों का लिखना, यानी वाक्य ऐसा होगा अप्रशस्त वर्ण चार उपघात इन अप्रशस्त प्रकृतियों का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणे हीन अनुभाग को लिए हुए होता है। ये कदाचित वाली तिर्यंच गति को उन्होंने नहीं लिखा है, है ना, अलग से बताना कि तिर्यंच गति का कदाचित बंद करता है और वो अनंत गुणा हीन बनता है, एक वाक्य डालेंगे हम वहां पर, क्योंकि उद्योत को लिया है ना। हा? फिर से देखो अप्रशस्त ऊपर भी बताना था, पहले वो प्राकृत में देखो, नीचे से दूसरी लाइन अपसत्थ चार उप अपसत्थानम, यानी इन अप्रशस्त प्रकृतियों का नियम अनंत गुणहीन, वैसे यहां क्या करना है अप्रशस्त वर्ण चार उपघात, ये तो है वैसे ही पढ़ना, और शब्द निकाल कर वहां इन लिखना, फिर वो अप्रशस्त रखना, और बाकी विहाय गति का के बदले प्रकृतियों का नियम से बंद करता है, क्योंकि ये ध्रुवबंदी अप्रशस्त प्रकृतियां है। ये किसके साथ बात चल रही है, पंचेंद्रिय जाति के साथ, और पंचेंद्रिय जाति के उत्कृष्ट के साथ हुआ तो वहां अप्रशस्त विहाय गति तो बंदेगी नहीं, उत्कृष्ट के साथ तो उत्कृष्ट प्रशस्त विहाय गति बंदेगी, ख्याल में आई ना क्या कहना चाहते हैं। तिर्यंच गति का लिखना चाहिए, कहीं आया नहीं ना तिर्यंच गति कदाचित में, क्योंकि प्रशस्त प्रकृतियां कदाचित वाली आ गई परंतु अप्रशस्त कदाचित वाली आई ही नहीं, और कदाचित में अप्रशस्त वाली जो तिर्यंच गति, हाँ तिर्यंच गति और गत्यानुपूर्वी लिख लेते, इस वो दो गति का सन्निकर्ष आया है, ये अभी हमने पंचेंद्रिय जाति के साथ उसका साथ सन्निकर्ष चल रहा था। हाँ, यानी पंचेंद्रिय जाति का उत्कृष्ट कर रहा है, वहां तिर्यंच गति का कदाचित बंद होगा, हीन अनुभाग को लिए हुए होता है ना, सब होगा ना पूरा पैराग्राफ, उसके बाद एरो करके नीचे लिखो फुटनोट में, तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का मिनट कदाचित बंद करता है यदि बंद करता है तो नियम से अनंत गुणहीन अनुभाग का बंद करता है। और ये होगा सातवें नरक वाला अभव्य, क्योंकि उसके अति विशुद्धि में हाँ पंचनी जाति और तीरंज गति का बंध होगा। आगे बढ़ते अभी सासादन सम्य दृष्टि जीवों में अभव्य के बाद ये सम्यक तो मार्गणा है, परंतु जैसे हमने पहले सम्यक दृष्टियों की बात पहले बता चुके थे ना, मनोपरे ज्ञानी की बात, हाँ अभिनिबोधि ज्ञानी के वहां अभिनिबोधि ज्ञानी के वहीं पर बताया था सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक, सबकी बात वहां बता चुके थे। इसलिए अभी यहाँ सासादन सम्यक दृष्टि जीवों में छह कर्मों का भंग ओघ के समान है। छह में मोहनीय को भी छोड़ा, क्योंकि ओघ में तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट होता है, तो उसके अन्य उत्कृष्ट होते वो बताना था। अब यहाँ सासादन में मिथ्यात्व नहीं बनता है, और क्या नहीं बनेगा मोहनीय का, नपुंसक वेद, हाँ है ना, तो मोहनीय और नाम कर्म को छोड़कर। अभी मोहनीय में क्यों अलग से लिया, क्योंकि हम मिथ्यात्व का बंध नहीं है, नपुंसक वेद का बंध नहीं है। तो कहते अनंतानुबंधी क्रोध के, अभी यहां बनती कितनी है, तो 16 का 16 बनती है, उसमें से एक को लेना है और उसके साथ सन्निकर्ष लगाना। तो अनंतानुबंधी क्रोध के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव 15 कषाय है, यानी वो क्रोध को छोड़कर बाकी मानवाएं लोभ और बाकी सब स्त्रीवेद। अब देखो अति संकलेश में स्त्रीवेद ही बंधेगा, क्योंकि नपुंसक वेद की बंध विच्छित्ति हो गई पहले में, यहाँ नपुंसक वेद बनता ही नहीं है, तो अति संकलेश में स्त्रीवेद को लेना है यहाँ पर। अरति शोक भय जुगुप्सा, वो तो ध्रुवबंदी है और यहाँ अरति शोक ही बंधेगी, हास्यरति यहाँ नहीं बंधेगा, इनका नियम से बंध करता है, किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंध करता है। और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। ये सब प्रकृतियां आपस में सन्निकर्ष ऐसा ही होगा, इसी प्रकार इन सब प्रकृतियों का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, किंतु इनमें से किसी एक प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव शेष प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग भी बंध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध भी करता है। और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। अब देखो पुरुष वेद हास्य और रति का भंग ओग के समान है, यानी सासादन में हमने देखा ना पुरुष वेद के साथ अभी जो ऊपर की प्रकृतियां कौन सी थी, 16 कषाय, स्त्रीवेद सॉरी पुरुष वेद के साथ स्त्रीवेद को छोड़ना, 16 कषाय, अरति शोक और भय जुगुप्सा, कैसे बंधेगी, अनंत गुणाहीन बन गई। ख्याल में भाई, अब हास्य के साथ लगा लेना है, हास्य के साथ लगा लो। नहीं, हास्य के साथ अर्धिशो को छोड़ो, पर स्त्री वेद को लेना, यानी 16 कषाय स्त्री वेद और भय जुगुप्सा अनंत गुणाहीन बन देगी। ख्याल में आई ना बात? हाँ, पुरुष वेद के उत्कृष्ट के साथ अरति शोक को लेना और हास्य के उत्कृष्ट के साथ श्री वेद को लेना, उनको आपस में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का विकल्प नहीं लेना है। ऐसे सहनन और संस्थानों में भी इक्वल वालों का विकल्प नहीं लिया था, उसके ऊपर वाले अनंत गुणाहीन होकर बनते ऐसा लिया था। देखो, पुरुष वेद हास्य और अति का भंग ओक के समान है, हाँ, हमने ओक में देखा था, निकालो पेज नंबर 2। दो पेज पर हमने चर्चा भी की थी उसके बारे में। देखो, ये मोहनी का है ना, पहले मिथ्यात्व का बताया है, उसके साथ 16 कषाय नपुसक वेद अरति शोक भय जुगुप्सा, वो सबका आपस में ऐसा ही लेना। अब पांचवी छठी लाइन में स्त्री वेद का उत्कृष्ट के साथ, ऊपर के जो है केवल नपुसक वेद को छोड़ो, बाकी सब वैसे बंधेगी परंतु अनंत गुणाहीन बंधेगी। और पुरुष वेद के साथ ऐसा ही सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी पुरुष वेद के उत्कृष्ट के साथ मिथ्यात्व 16 कषाय अरति शोक भय जुगुप्सा का अनंत गुणाहीन बंधेगा। और वहां हास्य के उत्कृष्ट के साथ किसको लिया है, मिथ्यात्व 16 कषाय भय जुगुप्सा का नियम से बंद करता है, और स्त्रीवेद और नपुसक वेद का कदाचित बंद करता है, पुरुष वेद को नहीं लिया था। दो विकल्प कौन से, स्त्रीवेद या नपुसक वेद, और दोनों ही कैसे बंधेगी, अनंत गुणाहीन बंधेगी। यहाँ नपुसक वेद बनता ही नहीं है, इसीलिए तो ओक के समान कह दिया, पर हम उसमें समान नपुसक वेद जहाँ बनता ही नहीं है, हाँ, तो उसका छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अभी सासाधन में तीर्य, ये तो मोहिनी की हो गई बात, अब नाम कर्म की बात। तो सासाधन में तीर्यंच गति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव स्वामी कौन होगा? हाँ, तो मनुष्य क्या बांधेंगे, यहाँ नरगति बनती नहीं है, तो कितना भी संकलेश होगा तो तीर्यंच गति बंधेगी, चारों गति के जीव लेने पड़ेंगे। देखो, तीर्यंच गति का उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ओग में जब तीर्यंच गति का उत्कृष्ट था तो हुंड संस्थान बनता था, यहाँ उसकी बंधे विच्छित हुई है, तो यहाँ उसके उत्कृष्ट के साथ कौन सा बंधेगा, तो वामन बंधेगा। कीलक सहनन, समझ में आती है बात, ये ऐसा 5 नंबर का सहनन और 5 नंबर का संस्थान बंधेगा। अप्रशस्त वर्ण चतुष तीरंज गत्यानुपूर्वी उपघात अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिरादि 6 का नियम से बंद करता है, किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है। यहाँ जो बनती नहीं उसकी बात लेना ही नहीं है, वामन बनता है तो उसका उत्कृष्ट, यहाँ तीर्यंच गति का उत्कृष्ट है तो उसका भी उत्कृष्ट होगा, सासाधन के योग्य वह सब जगह से। ना, वो एक दूसरे के साथ नहीं लेते, एक साथ नहीं लिया ऐसे कहाँ होगा। निकालो तीरंज गति, ओग में तीरंज गति, ओग में तीरंज गति ले लो, एक संस्थान के साथ दूसरे संस्थान के उत्कृष्ट नहीं लेते। तीरंज के साथ एक के साथ दूसरा लेते हैं ना, तीरंज के साथ सहनन भी होगा संस्थान भी होगा। जहाँ हुंड संस्थान लिया है वहां संप्राप्त रूपाटिका लिया कि नहीं लिया, तो वो आपस में देखा था, देखो देखो, आपस में नहीं लेते, उसको अनुभाग में कोई डिफरेंस पड़ता होगा ना। जहाँ 3 इंच गति का अभी हमने उत्कृष्ट देखा था, हाँ, इसीलिए वो इक्वल वाले, जैसे पुरुष वेद के साथ हास्य को नहीं लिया है, ऐसे इक्वल एक संस्थान के उत्कृष्ट के साथ दूसरा उसी लेवल का संस्थान नहीं लिया उन्होंने। यही तो मैं अभी थोड़ी देर के पहले वही तो मैंने बताया था, पर यहाँ 3 इंच गति के साथ दोनों को लेना है, उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी में। देखो यहाँ क्या लिया, 3 इंच गति का उत्कृष्ट हो रहा है। अब यहाँ वो तीव्र संकलेश में 3 इंच गति बांध रही है, क्योंकि शासादन में 3 ही गति बनती है, 3 इंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और वो यहाँ जो बंध विच्छित हो गई उसके छोड़ दा, क्योंकि 6 नंबर का सहनन संस्थान उसके बंध विच्छित पहले में होती, अब यहाँ 5 नंबर का है और प्रशस्त में उसका नंबर आएगा। और बाकी तो हमने देखा था जो उपघात और प्रशस्त विहार गति वगैरह वगैरह, 80 आदि 6 का नियम से बंद करता है, किंतु वो उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है। यहाँ शासादन के योग्य ही उत्कृष्ट लेना है, उसका अपना उत्कृष्ट कहाँ, वो अन्य गुणस्थान के भूमि हम कंसिडर करते हैं, यहाँ नहीं। यानी अस्थिर वगैरह हमने देखा ना, अस्थिर वगैरह 6 का उत्कृष्ट बंधन नरक गति के साथ होता है, पर यहाँ वो उतनी वाली संकलेश होगा ही नहीं। यहाँ पर यहाँ शासादन के योग्य जीवों में अस्थिर का यहाँ उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट। और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है तो वह 6 स्थान पति थानी को लिए हुए होता है। पंचेंद्रिय जाति आदि का नियम से बंद करता है, क्योंकि यहाँ पंचेंद्रिय जाति ही बंधेगी, 4 जाति के तो बंधे विच्छित्ति हुई है, जो अनंत गुणे हीन अनुभाग को लिए होते हैं, क्योंकि ये प्रशस्त है। ये जब शासादन में आने वाला जो है उपशम समय तो इसे गिर कर आया है, तब उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, यहाँ वो अनंत गुणाहीन बंधेगी। उद्योत का कदाचित बंद करता है, जो अनंत गुणे हीन अनुभाग को लिए हुए होता है, क्योंकि 3 इंच गति का उत्कृष्ट बंद हो रहा है, उसका अर्थ उसके संकलेश ज्यादा है और उद्योत प्रशस्त प्रकृति है, वो अनंत गुणाहीन बंधेगी। शेष भंग वोग के समान है, ओग के समान ही नहीं, ऐसा ही लेना है। देवगति चतुष्क का उत्कृष्ट कर रहा है, तो वहां बंधने वाली जो पंचेंद्रिय जाति तेजस कर्मण वगैरह वगैरह, वो सब कैसे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट होगी। मनुष्य गति का उत्कृष्ट कर रहा है, वहां प्रशस्त भी और अप्रशस्त भी प्रकृति अनंत गुणाहीन बंधेगी। असंगी जीवों में सामान्य 3 इंचों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्म का भंग मनुष्य पर्याप्तकों के समान है। यही वो हास्य और उसकी बात होगी। देखो 11 पेज निकालना, कि 3 इंचों के समान कहा, क्योंकि वहां 4 गति बनती है ना, वो सभी वैसा ही होगा सामान्य 3 इंचों के समान, परंतु असंगी में वो पंचेंद्रिय 3 इंच अपर्याप्त जो है उसमें देखो मोहनीय का निकालो ना। मिथ्यात्व का भंग ओक के समान है, जहां मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है वहां 16 कषाय, नपुसक वेद और अतिशोक भय जुगुप्सा बन रहे, आपस में वैसा ही होगा। सेकंड लाइन 11 पेज 22 नंबर का पैराग्राफ मिला, फिर से पहली लाइन में मिथ्यात्व का भंग ओग के समान है, मिला क्या? ओग के समान का अर्थ क्या है? जहां मिथ्यात्व का उत्कृष्ट हो रहा है वहां 16 कषाय बन रहे हैं, नपुसक वेद बन रहा है, और रति शोक और भय जुगुप्सा, ये दो नंबर पेज पर थे। आपस में उनका सन्निकर्ष ऐसा ही होगा। अब स्त्री वेद का उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला मिथ्यात्व 16 कषाय है, भय जुगुप्सा का नियम से बंद करता है। हमने ओग में क्या देखा था, अरति शोक का भी नियम से बंद करता है। यहाँ अरति शोक को छोड़ा है क्योंकि हास्य रति अरति शोक को विकल्प में कदाचित में रखेंगे। तो स्त्रीवेद के उत्कृष्ट के साथ मिथ्या तो 16 कषाय भय जुगुप्सा का नियम से बंद होगा, जो अनंत गुणाहीन होगा। क्योंकि स्त्रीवेद का उत्कृष्ट हो रहा है ना, तो तत्प्राग्य संकलेश वाला लेना। अति संकलेश में नपुसक वेद का बंद हो रहा था, यहाँ तो हम यहाँ असंगी की बात चल रही है ना अपने, तो वो अपर्याप्तों के समान बता रहे हैं। अब देखो आगे, अभी हास्य रति को पहले लिया। हास्य रति और अरति शोक का कदाचित बंद करता है किसके साथ, स्त्री वेद के उत्कृष्ट के साथ। ये दोनों जो है ने युगल, उसको कदाचित में रखा है, जो अनंत गुणे हीन अनुभाग को लिए हुए था। ओग में क्या डिफरेंस था, स्त्री वेद का उत्कृष्ट करने वाला ना हास्यरति के उत्कृष्ट के साथ स्त्रीवेद या नपुसक वेद बनता था, स्त्री वेद के उत्कृष्ट के साथ अरति शोक ही बनता था। हाँ, अनंत गुणाहीन बनता था। अब यहाँ क्या लेना है, पहले मिथ्यात्व वगैरह को लेने के बाद स्त्रीवेद के उत्कृष्ट के साथ अरति शोक भी बन सकता है, हास्यरति भी हो सकता है। यानी स्त्रीवेद के उत्कृष्ट से भी हास्यरति का उत्कृष्ट ज्यादा है, ख्याल में ना। हमेशा हमने क्या देखा था, अरति शोक का ज्यादा है, फिर उसके साथ नपुसक वेद का दे इक्वल, उसके बाद स्त्रीवेद का लिया था, उसके बाद पुरुष वेद और हास्य का इक्वल लिया था। यहाँ पर क्या लेना है, पहले मिथ्यात्व वगैरह सब लेना, फिर हास्य रति वहां लेना, और उसके नीचे स्त्रीवेद लेना। तो स्त्रीवेद के उत्कृष्ट के साथ हास्य रति भी और अरति शोक भी आइदर और अनंत गुणाहीन बन देगी। कहां पर, अपर्याप्तकों में और असंगियों में। हाँ, उससे हास्य रति का ज्यादा है। यानी देखो, अति संकलेश में अरति शोक बनते हैं, थोड़े कम संकलेश में हास्य रति बंधेगी वहां पर, और थोड़े कम संकलेश में फिर श्रीवेद का बंद होगा। उससे अधिक यानी अधिक संकलेश में भी उसके हास्य का बंद हो रहा है, हास्य रति का, ये उसका अर्थ होता है। अपने पेज पर आना भी, असंगी की बात हम पढ़ रहे थे कि मोहनीय कर्म का भंग मनुष्य अपर्याप्तकों के। यहाँ मनुष्य अपर्याप्त कहाँ दिया, और वो पंचेंद्रिय तीरेंच अपर्याप्तकों में, सभी अपर्याप्तकों में ऐसा ही जानना, ये बात बताई थी। भले यहाँ मनुष्य अपर्याप्त लिखा, परंतु वो पंचेंद्रिय तीरेंच अपर्याप्तकों के समान है, और वो हमने वहां से पढ़ लिया भी। अनाहारक जीवों में कार्मण कायोगी जीवों के समान भंग है। जरा कार्मण कायोगी भी देख लेते हैं, भूल गए ना, बहुत दिन हो गए ना। पेज नंबर 19, देखो यहाँ क्या ख्याल में रखना है, अन्यत्र हम सर्व संकलेश मनुष्य तीरेंज नरक गति बांधते, और सर्व संकलेश देवनार की तीरेंज गति बांधते। कारमान का योग में नरक गति बनती नहीं है, इसलिए चारों गति के जीव सर्व संकलेश में तीरेंज गति का ही बंद करेंगे। ये बात ख्याल में रखकर यहाँ बताना है। देखो ये पेज नंबर 19 निकालना, मिला 42 नंबर का पैराग्राफ, कि सात कर्मों का भंग ओग के समान है। एक्चुअली सात कर्मों में तो आयु का बंध ही नहीं है, उसको छोड़ो। अभी मोहनीय की सॉरी ये बात देखनी है यहाँ पर, नाम कर्म की। तीर्यंच गति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव, अभी ऑप्शनल में, क्योंकि जो देव है पितलेशा वाले एक इंद्री जाति के साथ बांधेंगे, ऊपर के देव पंचेंद्री जाति के साथ, नारकी भी पंचेंद्री जाति के साथ, और मनुष्य एक इंद्रिय सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ, इतनी सारी वैरायटी है ना। तो इसलिए तिर्यंच गति का उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव एक इंद्रिय जाति, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, अप्रशस्त विहाय गति, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण और दुस्वर का कदाचित बंद करता है। कदाचित क्यों कहा, कोई पंच इंद्रिय के साथ बांध रहे हैं, कोई एक इंद्रिय के साथ बांध रहे हैं, और कोई सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ बांध रहे हैं। इसलिए इतने सारे ये सब कदाचित में रखे, और उनका उत्कृष्ट भी होगा, अनुत्कृष्ट भी होगा, और छह स्थान पतित होगा। अब वहां पांचवी लाइन, पांचवी या छठी लाइन, पंचेंद्रिय जाति औदारी कंगोपांग परघा तुच्छवा सातप उद्योत चतुष्क का, इनका भी कदाचित रखा। ऊपर की कदाचित वाली थी परंतु अप्रशस्त थी, इसलिए उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट रखा। ये कदाचित वाली है परंतु प्रशस्त है, जो अनंत गुणाहीन बंदेगे, क्योंकि कारमान का योग में ये प्रशस्त प्रकृतियां कौन बांधेगा उत्कृष्ट प्रतिभा। वो पंचेंद्रिय जाते तो सब बांध सकते हैं, पर वो कौन देवनार की हाँ उत्कृष्ट चाहिए, पर उनका अपना उत्कृष्ट कहाँ होता है, ये मेरा प्रश्न है। समय दृष्टि को होता है, समय दृष्टि को उसका उत्कृष्ट होता है। इसलिए यहाँ पर वो कैसे बंधेंगे, अनंत गुणाहीन बंधेंगे। अनंत गुणाहीन क्यों कहा, इसका हमको कारण मालूम होना चाहिए। एक तो प्रशस्त प्रकृतियां है और तिर्यंच गति के उत्कृष्ट के साथ कदाचित बंधने वाली है, जो अनंत गुणाहीन। अब नियम से बंधने वाली कौन सी है, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अग्रो लघु निर्माण, ये नियम से बंधने वाली प्रशस्त है, वो भी अनंत गुणाहीन बंधेगी। और नियम से बंधने वाली अप्रशस्त है कौन सी, हुंड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पांच का, क्योंकि दुस्वर को कदाचित में रखा था। अब ये भी अप्रशस्त है, तिर्यंच गति भी अप्रशस्त है, तो इनका उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी होगा, और वो छह स्थान पतित होगा। अब आना अपने पेज पर, कारमान का योगी जीवन के समान है, तो ये तिर्यंच गति के उत्कृष्ट के साथ बताया। फिर कारमान का योगी में वही देखना, फिर 19 पेज फिर निकालना। मनुष्य गति का उत्कृष्ट हो रहा है कारमान का योग में, मनुष्य गति का उत्कृष्ट कौन करेगा, कारमान का योग में गुणस्थान पहला दूसरा या चौथे गुणस्थान वाला कौन, पन समय दृष्टि देवनार की हाँ, इसलिए वहां प्रशस्त प्रकृतियां उत्कृष्ट बनने की उनके लिए, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाला है ये सर्वविशुद्ध, कारमान का योग के लिए वो सर्वविशुद्ध, और देवगति के लिए मनुष्य, पर उसके साथ तो वही सन्निकर्ष, पंचेंद्रीय जाति वगैरह प्रशस्त प्रकृतियां उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी बन देगी। वैसे मनुष्य गति पंचक का तो आपस में ऐसा ही होगा, और देवगति चतुष्क के लिए समय दृष्टि मनुष्य तिर्यंच है, हाँ उसके भी प्रशस्त प्रकृतियां उत्कृष्ट भी है। हाँ जो अप्रशस्त प्रकृतियां है वो अनंत गुणाहीन बंधेगी, इसलिए अभी वो कारमान का योग में ही निकालो 20 पेज। अब पंचेंद्रिय जाति का उत्कृष्ट हो रहा है, वो भी कौन है, समय दृष्टि, वो देवगति भी बांध सकता है मनुष्य गति, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति का उत्कृष्ट तो चारों गति वाले करेंगे सम्यक्त्व के साथ। तो इसलिए दो गतियां ऑप्शनल लिया, दो शरीर दो अंगोपांग, फिर सहनन मनुष्य गति के साथ बंधेगा, देव गति के साथ नहीं बंधेगा, इस तरह से वो सब कदाचित में लेना, उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी लेना। अब पंचेंद्रिय जाति का उत्कृष्ट बन रहा है 20 पेज पर मैं पढ़ रही हूँ, और उसके साथ जो नियम से बंधने वाली प्रशस्त प्रकृतियां कौन सी हुई, ये अभी हमने कदाचित वाली देखी। हाँ, तेजस कारमान समय चतुर संस्थान प्रशस्त वर्ण चतुर्ष अगुर लघु त्रिक प्रशस्त विहाय गति त्रस चतुर्ष स्थिरादि छ और निर्माण, ये नियम से हुए। वो भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वो छह स्थान पतित होगी। हाँ? वो तो कदाचित में लिए, ऊपर ऊपर ले लिया सेकंड लाइन में, वो कदाचित में चली जाएगी। वो तो मनुष्य गति के साथ बंधेगी, देवगति के साथ नहीं। और जो अप्रशस्त प्रकृति है ना, ध्रुवबंध वाली अप्रशस्त वर्णादि और उपघात, वो अनंत गुणाहीन बंधेगी। अब उसी कारमान का युग में एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट कर रहा है। एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव अब सौधर्म ईशान तक का देव भी करेंगे या मनुष्य तीन इंच भी करेगा। मनुष्य तीन इंच भी करेगा क्योंकि देखो कारमान का युग में उत्कृष्ट संकलेश है, मनुष्य और तीन इंच है, नरक गति तो बांधते नहीं है, तो उत्कृष्ट संकलेश में क्या बांधेंगे? उत्कृष्ट संकलेश में तीन इंच गति कौन सी जाति के साथ? एक इंद्रिय जाति के साथ कौन सा बंद करेंगे? बोलो लक्ष्मी। नहीं, मेरा सवाल है, तीन इंच गति बांध रहे ना, तो तीन इंच गति और एक इंद्रिय जाति बांध रहे, यानी मनुष्य और तीन इंच कारमान का युग में अति संकलेश में एक इंद्रिय जाति का बंध कर रहे, तो एक इंद्रिय का कौन सा वाला बंध स्थान होगा? हाँ, अपर्याप्त का, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त वाला लेना, वो वाला लेना। हाँ, तो इसलिए वो ऑप्शनल में कौन सी प्रकृति है, क्योंकि देव नारकी बांधेंगे तो एक इंद्रिय का तो बंध तो देव ही करेंगे, नारकी तो बांधते नहीं है, वो बादर पर्याप्त प्रत्येक को बांधेंगे और मनुष्य तीन इंच सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त को बांधेंगे, इसलिए बहुत सारी कदाचित में चली जाएगी प्रकृतियां। कौन सी? परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, अपर्याप्त, ये सब कदाचित में जाएगी। देखो पढ़ेंगे यहाँ पर 44 नंबर का वो पैराग्राफ 20 नंबर पेज पर कारमान का युग की बात चल रही है। एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव तीर्यंच गति हुंड संस्थान अप्रशस्त वर्ण चतुष तीर्यंच गत्यानुपूर्वी उपघात स्थावर अकेले को लिया और अस्थिर आदि पांच का नियम से बंद कर दिया। नियम से बंधने वाली पहले लिए, वो उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी और छह स्थान पतित को लिया। अभी पांचवी लाइन में एक केंद्रीय जाति का उत्कृष्ट हो रहा है, जहां प्रशस्त प्रकृति जो नियम से बनती है, औदारिक तेजस कारमान शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष अगुर लघु अकेला लिया, परघात उच्छ्वास को छोड़ा और निर्माण का नियम से बंद करता है, परंतु एक इंद्रिय का उत्कृष्ट है, संकलेश वाला है और ये प्रशस्त प्रकृति है, वो अनंत गुणाहीन बंधेगी। अब कदाचित वाली परघात उच्छ्वास, एक इंद्रिय जाति के साथ परघात उच्छ्वास बांधने वाले कौन है? तो देव है। आतप उद्योत, आतप का भी बंध सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ नहीं हुआ, देवों के ही होगा, उद्योत को भी वही बांधेंगे। बादर पर्याप्त और प्रत्येक वो देवी बांधे, कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग को लिए हुए होता है, क्योंकि सारे प्रशस्त प्रकृतियां हैं। अब एक इंद्रिय जाति के उत्कृष्ट के साथ सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण का भी कदाचित बंद, कदाचित क्यों? मनुष्य तीन इंच करते हैं, वो उत्कृष्ट अनुभाग है और उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी और छह स्थान पति, ये समझ में है ना बात? ऐसे वो सूक्ष्म का लगाना, सूक्ष्म के साथ साधारण अपर्याप्त उत्कृष्ट भी हो सकते हैं, अनुत्कृष्ट भी हो सकते हैं, इस तरह से उसको ले लेना। हाँ, अब आते हैं 27 पेज पर अपनी जो मार्गणा चल रही। अनाहारक जीवों में कारमण कायोगी जीवों के समान भंग है जो अभी हमने पढ़ लिया। कहते इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ, अभी तो उत्कृष्ट के साथ हम देख रहे थे, अब इसके आगे जघन्य की बात करनी है, स्वस्थान में जघन्य, उसका स्वामी देखना पड़ेगा पहले। अप्रशस्त प्रकृतियां कितने, तो क्षपक प्रकृतियां है, कहीं कहीं तो जहां उसकी बंद विच्छित्ति होती है वहां देखना पड़ता है, इस तरह से हमको सोचना है। देखो जहां क्षपक होती है तो वहां जो नवे गुण स्थान के ऊपर जो है वो एक का उत्कृष्ट तो दूसरे सॉरी जघन्य तो दूसरे का भी जघन्य होगा, क्योंकि परिणाम समान है। हाँ। अब यहां देखते हैं जघन्य का प्रकरण है। सातवेदनी का जघन्य कहां होता है? हाँ? कौन सा मिथ्या दृष्टि? पंचेंद्रिय के एक इंद्रिय मध्यम परिणाम कहीं पर भी होगा, हमने अंतर में देखा था ना, असंख्यात लोग का अंतर वगैरह वगैरह। एक उत्कृष्ट उत्कृष्ट सोचते तो जगहने की बात भूल जाते हैं। जो परावर्तमान प्रकृतियां होती है बहुत सारी वो एक इंद्रिय, अरे मनुष्य गति भी एक इंद्रिय को मध्यम परिणाम में जगहने बांधता है, हमने देखा था उसको। देखो अभी पढ़ेंगे तो याद आ गया, हेलो धीरे धीरे। जघन्य का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। सन्निकर्ष में इतना नहीं सोचना पड़ता, बस एक का जघन्य तो दूसरे का क्या है वैसे। यहाँ तो वेदनीय में तो सन्निकर्ष लगेगा ही नहीं, क्योंकि सातावधी तो सता बनती ही नहीं जहाँ आयु में भी नहीं लगता है। हाँ। तो जघन्य का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ की अपेक्षा, अभिनिर्बोधी ज्ञानावरण के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, वो क्षपक सूक्ष्म सांप्रा है ना, चार ज्ञानावरण का नियम से बंद करता है, जो नियम से जघन्य अनुभाग को लिए हुए होता है। जब हमने उत्कृष्ट देखा था मिथ्या दृष्टि के, तो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी था, और यहाँ अनिवृत्तिकरण जो नवे गुण स्थान से परिणाम समान होते, अनुभाग का बंध भी समान होता है, इसलिए एक का जघन्य तो नियम से दूसरे का जघन्य होगा। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियों का, यानी ज्ञानावरण के पांचों है, उनका आपस में जघन्य अनुभाग के साथ सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार पांच अंतराय का सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी एक दानांतराय का जघन्य है तो अन्य चार का भी जघन्य ही होगा नियम से। निद्रा निद्रा के जघन्य अनु, हाँ फिर से, हाँ अरे नवे के बाद सब परिणाम समान है, नवे से परिणामों की समानता शुरू हो गई है। ये अनिवृत्तिकरण बादर, ये हम अनिवृत्तिकरण नाम देते ना, अब ये सूक्ष्म सांप्राय को बताना होगा तो अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय कहेंगे। तो अनिवृत्तिकरण जो शुरुआत हुई वो तो जैसे अप्रमत्त, सारे ऊपर के अप्रमत्त गुण स्थान है वो तो आदि हुआ वहां से, वैसे यहाँ अनिवृत्तिकरण में सबके परिणाम समान है, वहां से शुरुआत हुई तो ऊपर कहीं पर भी समान ही हो गए। प्रमत्त वो तो अंत दीपक है, प्रमत्त वो जो प्रमत्त शब्द है वो अंत दीपक है, और अप्रमत्त वो आदि है। यानी जब प्रमत्त कहेंगे तो छठे तक के सारे प्रमादि है, हाँ, और रमणपत्त सातवें से ऊपर के सारे अप्रमत्त है। ये तीन लाइन हो गई इस प्रकार सबका, हाँ इसी प्रकार पांच अंतराय का भी हो गया, पांच लाइन हो गए। अब निद्रा निद्रा के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, प्रचला प्रचला और स्त्यांग वृद्धि का नियम से बंद करता है, जो जघन्य भी होता है और अजघन्य भी होता है। स्वामी कौन है? संयम के सन्मुख वाला। तो जघन्य भी होता है अजघन्य, यदि अजघन्य होता है तो छह स्थान पतित अभिवृद्धि कहना है, जब हम उत्कृष्ट के साथ अनुत्कृष्ट देखते तो हानि को लिए हुए कहा, यहाँ जघन्य के साथ अजघन्य का कंपैरिजन है इसलिए वृद्धि को लिए हुए होता है। या तो अनंत भाग वृद्धि रूप होता है या असंख्यात भाग वृद्धि आदि पांच वृद्धि रूप होता है। स्थानपति बता दिया उसके फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने दो नाम ले लिए। उसमें से कोई भी एक हो सकती है, ऐसा ही है। छह दर्शनावरण का भी एक कौन है जीव, तो मिथ्या दृष्टि है ना, संयम के सन्मुख वाला, तो अन्य भी नियम से बंध ही रही है। तो छह दर्शनावरण का नियम से बंध करता है जो अनंत गुण वृद्धि को लिए हुए होता है। अब आप बताओ ये ऐसा क्यों कहा, क्या कहा? देखो निद्रा निद्रा का जघन्य हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अरे संयम, निद्रा निद्रा कहाँ बनती है? मिथ्या दृष्टि को बन रही है, संयम के सन्मुख वाले को उसको जघन्य हो रहा है। तो मिथ्या दृष्टि है तो नौ के नौ दर्शनावरण बन रहे हैं, तो ये तीन तो आपस में जघन्य अजघन्य बता दिए। अब बाकी जो छह दर्शनावरण है वो भी यहाँ नियम से बनती है, वो कैसे बंधेगी? अनंत गुणा अधिक बंधेगी, क्यों? अभी क्यों? नहीं नहीं, वो क्यों, उसका जघन्य कहाँ होगा ये आपको बताना है। क्यों का अर्थ क्या है, उसका अपना जघन्य कहाँ होगा उसके कंपेयर में यहाँ वो अजघन्य बन रहा है। निद्रा प्रचला का कहाँ है, जहाँ बंद विच्छित होती है। हाँ तो ये यहाँ वो, हाँ चार का है वो तो दसवें में, तो दोनों ही यहाँ कैसे बंधेगी? अनंत गुणा अधिक बंधेगी वृद्धि को लिए हुए, ख्याल में आई ना बात? पहले हम कैसे सोचते थे, उनका अपना जगह उत्कृष्ट कहाँ है उसके साथ यहाँ कैसे बंधेगा? अब हमको क्या सोचना है, उनका अपना जघन्य कहाँ है आठवें में और दसवें में, वो यहाँ कैसे बंधेगी? अनंत गुणा अधिक बंधेगी। वो क्षपक आठवें वाले को और क्षपक दसवें वाले को उनका जघन्य होगा। देखो फिर मैं पढ़ती हूँ, छह दर्शनावरण का नियम से बंध होता है, करता है जो अनंत गुण वृद्धि को लिए हुए होता है। उनके तो छह स्थान लिए, अनंत गुणा तक सबको लिया, अकेला अनंत भाग नहीं लिया, आदि पांच लिखा, यानी छह वृद्धि देख गई थी, छह आ गई उसके अंदर, यहाँ अकेला अनंत गुणा होगा, अनंत गुणा वाली है। और ये अनंत गुणा ज्यादा, ये वो उस अनंत गुणा से ये अनंत गुणा ज्यादा होगा, क्योंकि सातवें के सन्मुख वाले की विशुद्धि बहुत कम है, वो क्षपक जो आठवां गुणस्थान और दसवां, वो बहुत अधिक विशुद्धि है। इसी प्रकार ने निद्रा निद्रा के समान प्रचला प्रचला और स्त्यांग वृद्धि की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी जहाँ प्रचला प्रचला का जघन्य हो रहा है वहां तो निद्रा निद्रा और स्त्यांग वृद्धि नियम से बनती है, और वो जघन्य भी बनती है अजघन्य भी बनती है। अजघन्य होगा तो छह स्थान पतित वृद्धि को लिए हुए होता है, उसके साथ छह दर्शनावरण नियम से बनती है परंतु वो अनंत गुण वृद्धि को लिए हुए होता है। ये कथन वो दो प्रकृतियों के लिए ऐसा ही होगा। अब हमको निद्रा के साथ, अब निद्रा के साथ कितनी प्रकृतियां बनती है बोलो, जहां निद्रा का जघन्य हो रहा है कितनी बन रही है? हाँ? अरे दर्शनावरण की बता नहीं है, स्वस्थान चल रहे हैं, सहा बनती है तो अन्य पांच बंधेगी, तो अन्य पांच बंधेगी नियम से, परंतु पहले में पहले प्रचला को अलग लेंगे और उनको अलग लेंगे। हाँ प्रचला नियम से और स्वस्थान पतित होगा और बाकी अनंत, हाँ अधिक अधिक, हाँ अभी पढ़ेंगे यहाँ से। हाँ अभी जरा उल्टा सोचने की आदत डालो। देखो निद्रा के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये क्षपक अपूर्व करण वाला है, प्रचला का नियम से बंद करता है, किंतु दोनों के बंद विच्छित एट ए टाइम है, किंतु वह जघन्य भी होता है रजघन्य भी होता है, क्योंकि वहां परिणामों की वेरिएशन है वहां पर। यदि अजघन्य यानी एक ही जीव का है, एक ही जीव के दोनों अनुभाग के बंध के अंदर वो छह स्थान पतित का डिफरेंस पड़ता है, दोनों में डिफरेंस, दोनों जघन्य भी बन सकती है और डिफरेंट। देखो देखो यहाँ होगा ना, अनंत गुणा का डिफरेंस भी पड़ सकता है। जैसे देखो देखो स्थिति की अपेक्षा देखो, हम ज्ञानावरण की देखते थे, सुनो जरा, ज्ञानावरण का उत्कृष्ट के साथ आपको बताना है। तो जहाँ ज्ञानावरण का उत्कृष्ट हो रहा है एक का, मति ज्ञानावरण का, वह श्रुत ज्ञानावरण कैसे होगा, उत्कृष्ट भी होगा या कितने कम तक होता, पल्ले के असंख्यात विभाग तक। और अनुभाग में कितना देखा था हमने, कम में उत्कृष्ट के साथ छह स्थान, यानी अनंत गुणा तक का उसका डिफरेंस था। अब जगन्य में भी ऐसा ही लगाना, वहां हम हीन की बात करते, यहाँ अधिक की बात करेंगे, यानी वहां दोनों का ही अंत कोड़ा कोड़ी का बंध है, परंतु यहाँ अनुभाग में तो डिफरेंस इतना पड़ सकता है अनंत गुणा वाला। यानी एक ही जीव का एक ही परिणाम है, पर वो परिणाम हम किसकी अपेक्षा से देखते हैं, संकलेश विशुद्धि की अपेक्षा, वो स्थिति बंध में उसकी बात हम ले सकते हैं, परंतु उसी एक परिणाम में अनुभाग के वेरिएशन अनंत गुणा के पड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर स्थिति बंध के परिणाम में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध के परिणाम जुदे जुदे हो सकते हैं, इसलिए इसमें अनंत गुणा का भी डिफरेंस पड़ता है ये कहना है। पर वो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के बाद ऐसा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अभी देखते फिर पड़ती हूँ मैं, निद्रा के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव प्रचला का नियम से बंद करता है, वो नियम से बनता है तो ले लिया, किंतु वह जघन्य भी होता है रजघन्य भी होता है। यदि अजघन्य होता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब चार दर्शनावरण का नियम से बंद करता है, क्योंकि आठवां गुणस्थान है यहाँ छह बन रहे, तो अन्य चार का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण वृद्धि को लिए होता है, क्योंकि उसका अपना जघन्य दसवें के अंत में है और यहाँ वो कैसे बन रहे, अनंत गुणा अधिक बन रहे। इसी प्रकार प्रचला की मुख्यता से सन्निकर्ष, जैसे निद्रा का सन्निकर्ष देखा ऐसा ही प्रचला का देखना, यानी प्रचला के साथ निद्रा नियम से बनती है और वो जघन्य भी अजघन्य भी और शस्थानपतित वृद्धि को लिए हुए थे, और उसके साथ चार दर्शनावरण नियम से बनते अनंत गुण वृद्धि को लिए होते। अब चक्षु दर्शनावरण के जघन्य, अब ये दसवां गुणस्थान है, वहां तो चार बनती है तो अन्य तीन तो नियम से बंधेगी और जघन्य ही बंधेगी। देखो चक्षु दर्शनावरण के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तीन दर्शनावरण का नियम से बंद करता है जो नियम से जघन्य होता है, नियम डालना ना इसमें। इसी प्रकार तीन दर्शनावरण की मुख्यता से जानना चाहिए, यानी चक्षु दर्शनावरण के बदले अचक्षु दर्शनावरण लिखो, उसके बदले अवधि दर्शनावरण लिखो, उसके बदले केवल दर्शनावरण लिखो। साता वेदिनी के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव असाता वेदिनी का बंद ही नहीं करता है, वो जघन्य हो या उत्कृष्ट हो एक ही बनती है। इसलिए मैंने पूछा था ना किसको होती है, वो तो एक इंद्रिय में भी हो सकता है, पंचेंद्रिय में भी हो सकता है मध्यम परिणाम में। इसी प्रकार असाता वेदनीय की अपेक्षा जानना चाहिए। इसी प्रकार चार आयु और दो गोत्र के संबंध में जानना चाहिए, क्योंकि वो एक ही बनती है, उसके साथ कोई संकर्ष होता ही नहीं है। क्या? हाँ तो केवल दर्शनावरण का जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला क्यों नहीं होगा? नहीं कुछ गड़बड़ी चल रही है, कौन सी चार प्रकृति बनती है वहां बोलो, चार प्रकृतियां कौन सी बनती है दसवें के अंत में? दर्शन मत कहो, दर्शनावरण कहो, चार है ना दर्शनावरण, आप कुछ कहते हैं? हाँ, ये चार का बंद है ना वहां पर, कुछ कहीं घोटाला हो गया। देखो मिथ्यात्व के एक ओक की बात चल रही है ना, तो ज्ञानावरण की बात हो गई, दर्शनावरण की, उसके बाद मोहनी वेदनी का नंबर वो बता दिया और वेदनी के समान बाकी भी बता चुका। अब मोहनी की बात चली, अंतराय भी ज्ञानावरण के समान बता चुके, अब मोहनीय में लेना है। मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, तो अनुभाग का जघन्य बंद हो रहा है मिथ्यात्व का, हाँ संयम के सन्मुख वाला लेना, और मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति बंद, स्थिति बंद, मिथ्यात्व का बंद करेगा एक सागर में पल्ले का असंख्यात भाग कम। मैंने वो नहीं पीछे मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति बंद है, केंद्रीय जीव करते भूल गए। एक सागर में पल्ले का संख्या दो भाग कम कम। इसे थोड़ा पहला जरा पॉलिश कर दें। हाँ देख रही क्या, मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग, अपन यहाँ एक इंद्री को नहीं लेना है, पंचेंद्री को लेना है। मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब मोहनी के नियम से बंधेगी नहीं वहां सब, अनंतानुबंधी चार का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। अनंतानुबंधी को अलग से लिया क्योंकि उसका जघन्य यहीं पर होगा, संयम के सन्मुख वाले को। यदि अजघन्य, देखो अभी यहां उत्कृष्ट के उल्टा सोचना है हमको, क्योंकि जो ऊपर के गुण स्थानों में बंधे विच्छित्ति होगी ना, उनका यहाँ जघन्य नहीं होगा, उनका अधिक होगा, क्योंकि ऊपर जाके उनका जघन्य होने वाला है। तो यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। बारह कषाय, देखो अप्रत्याख्यानावरण का जघन्य कब है, चौथे से सातवें में जाने वाला, प्रत्याख्यानावरण का पांचवें से सातवें में जाने वाला, संज्वलन का अपने अपने बंद विच्छित्ति में क्षपक के होगा, तो ये बारह कषाय। पुरुष वेद क्षपक के बंद विच्छित्ति में उसका जघन्य होगा, और यहाँ कैसा बंधेगा, अनंत गुणा अधिक बंधेगा, अनंत गुणा वृद्धि रूप। हास्यरति भय जुगुप्सा आठवें के अंत में क्षपक के, तो इनका नियम से बंद करता है, क्योंकि संयम के सन्मुख अवस्था में यही बंधेगी जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। ये ख्याल में आई ना बात यहाँ तक? हाँ। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चार की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के, अकेला क्रोध अकेला अलग से लिया, जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, चौथे से सातवें में जाने वाला जीव है ये, तीन कषायों का नियम से बंद करता है। तीन कषाय ने अप्रत्याख्यान मान माया लोग, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। ये समझ में आई बात? अब कहते हैं आठ कषाय, आठ कषाय में प्रत्याख्यान और संज्वलन, वो अपने अपने जो बंद विच्छुत्ति के समय या वो वाला जो है प्रत्याख्यानावरण पांचवें से सातवें में जाने वाले का जघन्य होगा, और संज्वलन का अपने अपने क्षपक में जघन्य होगा, और यहाँ कैसे होगा, अनंत गुण वृद्धि रूप। और पांच नौ कषाय का नियम से बंद करता है, ये पांच नौ कषाय कौन से है? हाँ, पुरुष वेद हास्यरति भय जुगुप्सा, जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। ये समझ में आई बात? क्योंकि ये कौन सा जीव है? चौथे से संयम में जाने वाला है, सम्य दृष्टि है और वहां की विशुद्धि है उसके, तो यही बंदेगी उसके, इसलिए नियम से लिया। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान मान आदि तीन कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि ये सारे चौथे से सातवें में जाने वाला एक ही जीव है, उसी की बात बताई है। मिथ्यात्व का हो गया, मिथ्यात्व के समान अनंतानुबंधी की बात बताई। देखो मिथ्यात्व पहले लाइन में था, फिर पांचवी लाइन में अनंतानुबंधी को लिया, छठे लाइन में अप्रत्याख्यानावरण क्रोध को लिया, वो चौथे से सातवें में जाने वाला जीव। उनका केवल चार का आपस में समान होगा। हाँ, अब फिर प्रत्याख्यानावरण क्रोध को लिया, वह अन्य शेष तीन यानी वो प्रत्याख्यानावरण के बाकी तीन। फिर पढ़ते देखो, प्रत्याख्यानावरण क्रोध के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष तीन कषायों का नियम से बंद करता है, यानी वही जीव है ना पांचवे से सातवें में जाने वाला, प्रत्याख्यानावरण का जघन्य कर रहा है, तो उसमें से एक क्रोध को अलग लिया, तो अन्य तीन यानी मान माया लोभ का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, नीचे से चौथी लाइन। और यदि जघन्य अनुभाग बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। ये समझ में आई बात? प्रत्याख्यानावरण के एक के साथ अन्य तीन लेना, चार संज्वलन और पांच नौ कषाय का, यही प्रत्याख्यानावरण का करने वाला नियम से बंद करता है, जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है, क्योंकि उसका अपने अपने क्षपक के बंधे विचित्ते के समय उसका जघन्य होगा, यहाँ पर वो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार शेष तीन प्रत्याख्यानावरण कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। हमने क्रोध के साथ लगाया, वैसे ही मान के माया के लोभ के साथ होगा। अब संज्वलन के बारे में जरा अलग से सोचना है, जहां एक का जघन्य है वहां अन्य का नहीं होगा, क्योंकि वहां वो कैसे अनंत, क्योंकि वो एक 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 अलग अलग समयों पर उसकी बंध विच्छित्ति होती है, बाकी प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान अनंतानुबंधी एक साथ उसकी बंध विच्छित्ति होती है। तो यहाँ क्रोध का जघन्य ले रहे, क्रोध संज्वलन के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव तीन संज्वलनों का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है, क्योंकि अंतर्मूर्त बाद में वो मान का बंद विच्छित्ति होगी, यहाँ वो अनंत गुण वृद्धि रूप हो रहा है। मान संज्वलन के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव दो संज्वलनों का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुण वृद्धि रूप है, यानी माया और लोभ। माया संज्वलन के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव लोभ संज्वलन का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। हाँ, नौवे में बंधे क्षपक के, परंतु लोभ के साथ अन्य कोई बनती नहीं वहां पर। लोभ संज्वलन के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष संज्वलनों का अबंधक होता है। तो ये मिथ्यात्व और सोलह कषायों की बात बताई, अब वेदों की बात करेंगे। स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब स्त्री वेद का जघन्य कहाँ होगा? हाँ? हाँ, प्राग, नहीं तो नवे गुणस्तर में मत ले जाना, वहां उदय है, बंद नहीं है। हाँ, तो स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव मिथ्यात्व सोलह कषाय भय और जुगुप्सा का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। क्योंकि हमने देखा ना, स्त्री वेद का जो है प्रायोग लब्धि में तत्प्रायोग विशुद्धि वाला इसका बंद करेगा, वहां उसका जघन्य होगा। हाँ, तीस तीस नंबर के स्थान, नंबर तीस पर। तो वहां तो मिथ्या तो सोलह कषाय वो तो संयम के सन्मुख वाले, वो यहाँ अनंत गुणा बंधेगी। भय और जुगुप्सा का तो क्षपक आठवे के, ये भी अनंत गुणा बंधेगी। हास्य रति अरति शोक का कदाचित बंद करता है, जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है, क्योंकि ये भी यहाँ बंधने वाली प्रकृतियां हैं। क्योंकि अरति शोक का जघन्य कहाँ होता है? छठे गुण स्थान में तत्प्रायोग विशुद्धि वाले के। इसी प्रकार नपुसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। जो प्रायोगिक लब्धि का नंबर 27 वाला है उसके साथ भी ऐसा ही कथन होगा, बाकी कथन ऐसा ही होगा। अब पुरुष वेद के बदले के लिखना, अब पुरुष वेद का जघन्य तो क्षपक के होगा नवे गुणस्थान के पहले भाग में, तो उसके जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव। अब यहाँ क्या बंधेगी, चार संज्वलन। हाँ, तो चार संज्वलन का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है, क्योंकि उनकी बंधी विच्छित्ति उनके अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त बाद में होती है, यहाँ वो अनंत गुण वृद्धि रूप है। अब हास्य के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अभी हास्य का बंध कहाँ तक है, आठवें के अंतिम भाग तक है, चार संज्वलन और पुरुष वेद का नियम से बंध करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है, वो नवे तक बंधने वाली प्रकृति है, यहाँ अनंत गुण वृद्धि रूप होगी। और एक साथ बंध विच्छित्ति वाले कौन से, रति भय और जुगुप्सा का नियम से बंध करता है। देखो यहाँ विशेषता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजघन्य अनुभाग का भी, क्योंकि गुणस्थान आठवा है, यहाँ वेरिएशन होगा, अन्य अन्य प्रकृतियों में वेरिएशन हो सकता है। यदि अजघन्य अनुभाग बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार रति भय और जुगुप्सा की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, ये चारों का आपस में ऐसा ही होगा। अब अरति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जो, ये छठे गुण स्थान वर्ती है तत्प्रायोग विशुद्ध वाला। अब यहाँ क्या क्या बंधेगी, चार संज्वलन, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। इसमें तो बहुत आसान है मोहनीय में, क्योंकि यहाँ किसी कहाँ बंध विच्छित्ति होते हम नक्की कर सकते। अभी अरति के साथ शोक का नियम से बंद होगा, किंतु वह जघन्य अनुभाग का बंध भी करता है और अजघन्य अनुभाग बंध भी करता है। और यदि अजघन्य अनुभाग करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार शोक की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि उनकी बंध विच्छित्ति या कहो या उसका जघन्य अनुभाग बंध छठे गुण स्थान में होता है, तो वहाँ एक का जघन्य तो दूसरे का भी जघन्य हो सकता है और अजघन्य भी हो सकता है। तो जहाँ जघन्य अजघन्य दोनों विकल्प है वहाँ षट्स्थान पतित वृद्धि रूप, जघन्य के साथ कंपेयर करना है तो वृद्धि रूप कहना है। हाँ, और हम उत्कृष्ट के साथ अनुत्कृष्ट हानि रूप कहते थे, ये तो मोहनी की बात हो गई जघन्य की। हाँ, ये नाम कर्म का तो हम कल ले लेंगे, अब यही रुकेंगे। कल नंबर कौन सा है, आठ नंबर, लेक्चर नंबर आठ। चावाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।